ओम शांति। प्लीनरी सेशन टू आज का आरंभ होने जा रहा है। ग्लोबल समिट 2024, वैश्विक शिखर सम्मेलन, जिसका आज का टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। यह प्लीनरी अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ सभा में बैठे हुए आज के स्पीकर्स मोस्टली पहुंच चुके होंगे, आपसे निवेदन है आप कृपया मंच पर आ जाएं। भ्राता राधेश्याम गर्ग जी, भ्राता श्री राहुल सिन्हा जी, भ्राता श्री मुकेश माथुर जी, भ्राता डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, यदि आप सभी सभा में पहुंच चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस सभा में हमारे बीच और भी जो स्पीकर्स हैं, भ्राता बहरचंद भाई जी, भ्राता श्री रवि किशन जी, भ्राता श्री महेंद्र भट्ट जी, यदि आप सब सभा में पहुंच चुके हैं तो आपसे निवेदन है आप कृपया मंच पर पधारिए। और बाहर भी जो भाई बहने सुन रहे हैं, अभी सेशन आरंभ होने जा रहा है प्लीनरी सेशन टू, तो आपसे निवेदन है आप सब डायमंड हॉल में आकर बैठ जाएं। तो हम तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर मोहित गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी पहुंच गए हैं। करतल ध्वनि से आप स्वागत जरूर कीजिए दीदी जी का। दीदी जी हमारे बीच कल से पूरा टाइम थे, सुबह में भी, फिर 5 बजे भी आप लोगों को बहुत सुंदर सेशन करवाया, और अभी भी फिर से हम सबके बीच आए हैं। दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं इसके लिए। हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हमारे बीच पहुंचे हैं। साथ में भ्राता श्री महेंद्र भट्ट जी, भ्राता श्री रवि किशन जी, ऑनरेबल MP लोकसभा, वे भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम इनवाइट करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करते रहेंगे। सभी अच्छी जोरदार ताली बजाएं। मेहरचंद भाई जी भी पहुंचे हैं हमारे बीच में। और अभी मैं निवेदन करती हूँ बहनों से कि हमारे अतिथियों का बैज व बुके से स्वागत करें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड आदरणीय भ्राता जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत हो रहा है। बहनें बैज लगाकर बुके द्वारा स्वागत कर रहे हैं। वैसे ही हमारे बीच Honorable Minister of State for Railways and Food Processing, भ्राता श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, इनका भी स्वागत बहने कर रही हैं। सभी अतिथियों का स्वागत हो रहा है। चंद क्षण मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के साथ आरंभ करेंगे, उसके बाद वेलकम सॉन्ग होगा। परमात्मा का आह्वान हम इस सभा में मेडिटेशन के द्वारा करेंगे।
अयम निजः परो उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम्। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है, ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है, ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए, मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है, सच पूछो पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
ओम शांति। वेलकम सॉन्ग अभी मधुरवाणी ग्रुप माउंट आबू इन द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। विशेष इसमें गायक वृंद में सतीश भाई जी, भानु भाई जी, रमेश भाई जी और जयराज भाई जी बहुत सुंदर सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे मधुरवाणी ग्रुप।
फिर सजा है शांति वन का ये सुंदर संसार, अनमोल विभूतियों से ये सजा दिव्य दरबार। और आज तो आगंतुक हमारे सभी मेहमानों का हम सब जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। आप सब स्वागत स्वीकार।
सम्मेलन में आपका हुआ पदार्पण है, आनंद में आंदोलन में हर्षित आबू का कण कण है।
वैश्विक शिखर सम्मेलन में आपका हुआ पदार्पण है, आनंद में आंदोलन में हर्षित आबू का कण कण है।
धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का वंदन है, प्रिय स्वागत है अभिनंदन है वैश्विक शिखर सम्मेलन में।
गरि गप रे गप गधा पधा पधा परे सा, गरि गप रे गप धा पधा पधा परे सा।
आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता से ही स्वस्थ स्वच्छ समाज बन सकता।
आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता से ही स्वस्थ स्वच्छ समाज बन सकता।
अध्यात्म के उस परम स्रोत ने,
अध्यात्म के उस परम स्रोत ने
आपको दिया निमंत्रण है।
धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है,
प्रभु नंदन का वंदन है, प्रिय स्वागत है अभिनंदन है वैश्विक शिखर सम्मेलन में।
आध्यात्मिकता की परिभाषा कहती यहाँ की स्वभाषा, स्वस्थ स्वच्छ समाज बनाना आशा है और अभिलाषा।
आध्यात्मिकता की परिभाषा कहती यहाँ सबकी भाषा, स्वस्थ स्वच्छ समाज बनाना आशा है और अभिलाषा।
राजयोग के रंग में रंगा, राजयोग के रंग में रंगा, शांति वन का कण कण है,
धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है।
प्रभु नंदन का अभिनंदन, प्रिय स्वागत है अभिनंदन है, वैश्विक शिखर सम्मेलन में। ओ निग निग पग निग परि ग
सबके पिता शिव परमात्मा है, भारत वर्ष महान है, राजस्थान है धन्य ये आबू परम तीर्थ स्थान है।
सबके पिता शिव परमात्मा है, भारत वर्ष महान है, राजस्थान धन्य आबू परम तीर्थ स्थान है। झुक झुक अरावली करती, झुक झुक अरावली करती, मस्तक कुमकुम चंदन है,
धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का वंदन है, प्रिय स्वागत है अभिनंदन है,
वैश्विक शिखर सम्मेलन में आपका हुआ पदार्पण है,
आनंद में आंदोलन में हर्षित आबू का कण कण है, धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का वंदन है, प्रिय स्वागत है अभिनंदन है, प्रभु नंदन का वंदन है, प्रिय स्वागत है अभिवादन है, प्रभु नंदन का वंदन है, प्रिय स्वागत है अभिनंदन है, वैश्विक शिखर सम्मेलन में।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप को, वैश्विक शिखर सम्मेलन में आप सबका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और अभी गणेश वंदना, एक बहुत सुंदर स्वागत नृत्य होगा। चांद मिश्रा एंड शिवार्थ ग्रुप मुंबई से आया हुआ है, इनके द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ में गणेश वंदना प्रस्तुत की जाएगी। वंदना बहुत अच्छी तरह से कुमारियों ने, बहुत धन्यवाद ग्रुप का। आदरणीय भ्राता जी रविंद्र किशन जी, ऑनरेबल एमपी लोकसभा हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। इसी बीच भ्राता राहुल सिन्हा जी और भ्राता मुकेश माथुर जी भी हमारे बीच पहुंच गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहनों से निवेदन है बैज और बुके द्वारा स्वागत करें हमारे गेस्ट का। आदरणीय भ्राता ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा गोरखपुर भ्राता श्री रवि किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच पहुंचे हैं, यह भी बहुत एक सुंदर एस्पेक्ट है, आप पहुंचे हैं हमारे इस ग्लोबल समिट में। और मैं अभी निवेदन करती हूं वेलकम स्पीच देने के लिए, हमारे बीच भ्राता राधेश्याम गर्ग जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सोनालेक पेंट, ये वेलकम स्पीच देंगे भ्राता जी। भ्राता जी की विशेषता है कि वे राजयोग का भी अभ्यास करते हैं, तो राजयोगी मैनेजिंग डायरेक्टर कहूँगे मैं।
ओम शांति, सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तथा फरिश्ता स्वरूप दादियों को याद करते हुए मंच पर विराजित सभी महानुभाव, सभा में उपस्थित सभी मेहमानों, मीडिया कर्मी भाई बहने तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी बीके भाई बहने, आज बहुत खुशी हो रही है और यह मेरा परम सौभाग्य है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सुबह के कार्यक्रम में पधारे मंच पर विराजमान महानुभाव और सभा में पधारे सभी भाई बहनों का स्वागत करने का मौका मुझे मिला है। हम सबको बहुत खुशी है आज हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता पुष्कर सिंह धामी जी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सभी के बीच पहुंचे हैं। हम सभी भाई बहन उनका तहे दिल से, गहराइयों से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन है। इसके साथ साथ हमारे बीच दिल्ली से पधारे आदरणीय भ्राता रवनीत सिंह बिट्टू जी, जो कि भारत सरकार के रेलवे एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के राज्य मंत्री हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय भ्राता रवि किशन जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे बीच में हमारे निमंत्रण पर हमारा मान रखकर उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड से पधारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री महेंद्र भट्ट जी, विशेष हमारे बीच में हम सभी को अपनी शुभ प्रेरणाएं देने के लिए पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, जो कि बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। आदरणीय देवी भ्राता मेरचंद जी, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लगभग पिछले 55 सालों से जुड़कर अपनी आध्यात्मिक सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय उत्तराखंड राज्य के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डायरेक्टर हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। इसके साथ साथ दिल्ली से पधारे जी मीडिया के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ मुकेश माथुर जी, स्टेट एडिटर दैनिक भास्कर और प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, फाउंडर एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। पुण्य से सभा में उपस्थित सभी देश विदेश से पधारे मेहमानों का, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी आदरणीय भाई बहनों का, और जो लाइव टेलीकास्ट के जरिए हजारों भाई बहने जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पुण्य अपनी ओर से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से, लाखों भाई बहनों की ओर से, आप सभी का परमपिता परमात्मा के घर में आने पर कोटि कोटि स्वागत है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता राधेश्याम गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे बताया, इनकी स्पेशलिटी है कारोबार करते हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए यह राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात समय निकाल कर अभ्यास कर रहे हैं। तो समय कितने भी बिजी हो, समय हम निकाल सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप। और मैं अभी निवेदन करूंगी भ्राता मेहरचंद भाई जी, जिनका भी इंट्रोडक्शन हुआ, 55 इयर्स से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, सीनियर फैकल्टी उत्तराखंड, ब्रह्मा कुमारी उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं, एक शॉर्ट गॉडली सर्विस रिपोर्ट ऑफ उत्तराखंड प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो ईश्वरीय सेवाएं उत्तराखंड की हमारे समक्ष रखेंगे भ्राता मेहरचंद भाई जी।
परम आदरणीय जयंती दीदी जी, एडिशन चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री पुष्कर सिंह जी धामी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और सम्मानित मंच, मुझे आदेश हुआ है कि उत्तराखंड की सेवाओं के बारे, लास्ट ईयर 5 सितंबर 2023 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नशा मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी के साथ एमयू कराया, जिसके कारण हमने 2000 के लगभग कार्यक्रम रखे और जिसके साथ साथ हमें बाबा की सेवाओं को बहुत प्रसार मिला। 500 गीते पाठशालाएं और 20 सेवा केंद्रों की स्थापना की और अभी हाल में ही विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अनुमति से रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी मंत्रीगण को, विधायक महोदयों को, अधिकारीगण को, सबको रक्षाबंधन बांधा गया, जिससे बाबा का नाम सारे उत्तराखंड में चला गया। वहां पर हमने बच्चों के स्कूलों में जाकर, गांव-गांव के स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, उसमें हमने 100 से ज्यादा बच्चों के व्यसन छुड़वाए और 2000 से अधिक कार्यक्रम किए, 300 स्कूल और 700 से अधिक गांवों में जाकर निशुल्क नक्शा मुक्ति हेतु अभियान चलाया। 1.5 लाख से अधिक लोगों को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सपना है, वो निरंतर चल रहा है। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में, श्रीनगर में हमने श्रीमद् भगवद्गीता महासम्मेलन कराया, जिसमें बहुत विद्वान लोग, महामंडलेश्वर, जगतगुरु आए और 80 के लगभग संत आए थे और उससे पहले भी अयोध्या के संतों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 75 संत अयोध्या से आए थे। तो ऐसे वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं और सामाजिक प्रभाग की भी वहां कॉन्फ्रेंस हुई, हर वर्ग वहां कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसके लिए भी उनको समय पर समय इनवाइट करते जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गर्मिमा का बयान करें, आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हजूर, वो शख्सियत है आप जिन्हें सब सलाम करें। मैंने रवनीत सिंह जी बिट्टू, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए भी 2 लाइनें लिख के लाया हूं। सरल व्यक्तित्व में हमको दिव्य नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको दिव्य नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुने तो सुकून भरपूर मिलता है, फरिश्ते थे ये कभी हमने सुना तब बात सच निकली, हमें तो आप में गुरु गोविंद सिंह का नूर दिखता है, गुरु गोविंद सिंह का नूर दिखता है। मैं जनती दीदी के लिए भी 2 लाइनें दे रहा हूं। हमने देखा है कि गंगा जमुना तो भारत में बहती है, परंतु ये ज्ञान की नदी तो 140 देशों में बह रही है। कहते हैं कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मैं मानता हूं हमारी दीदी भी 24 घंटे इस प्रकृति को पवित्र कर रही है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि गीता में क्या लिखा मेरे जीवन से देखा जा सकता है, परंतु हम कह सकते हैं कि बाबा की जो मधुर शिक्षाएं हैं वो हमारी दीदी के जीवन से दिख सकती हैं। आपके लिए 2 लाइनें दीदी जी दे रहा हूं। धरती सा धीरज दिया आसमान सी ऊंचाई, धरती सा धीरज दिया आसमान सी ऊंचाई, खुदा ने तराश कर ये तस्वीर बनाई, ज्ञान गुण और शक्तियों से इनको भरते रहते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों से वो इनको भरते रहते हैं, ऐसी सजीव प्रतिमा को हम जनती दीदी कहते हैं, जनती दीदी कहते हैं। समय का अभाव है, मैं तो सब पर डाल देता, परंतु समय दीदी कह रही है पूरा हो रहा है, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने हमारा थॉट कैच किया, क्योंकि बहुत सारे वक्तागण आए और बहुत अनुभवी बैठे हुए हैं हमारे बीच में। तो अभी मैं आदरणीय श्री राहुल सिन्हा जी, जो मैनेजिंग एडिटर जी मीडिया, वे अपने इनसाइट्स रखेंगे, लेकिन इसके पहले भाई जी का फेलिसिटेशन होगा। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज, वे फेलिसिटेट करेंगे हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय राहुल सिन्हा जी, मैनेजिंग एडिटर जी मीडिया का। मैं उनका साइटेशन पढ़ती हूँ। राष्ट्र चेतना पुरस्कार प्रेजेंटेड टू मिस्टर राहुल सिन्हा, मैनेजिंग एडिटर जी मीडिया, नोएडा। On the auspicious occasion of Global Summit 2024 on Spirituality for Clean and Healthy Society at our Shantivan campus, Abu Road, Rajasthan, Bharat, from 4th to 7th October 2024, we feel very proud and honored to present you with Rashtra Chetna Puraskar. Taliyon se bhai ji ka hum felicitation karte hain. Award for sincere and dedicated services in promoting the true spirit of media. We recognize your commitment and high standards towards ethical and well-informed media and acknowledge your significant role in informing, educating and enlightening the masses. Your courage and resilience in overcoming different barriers and forging solutions out of challenges is worthy of due acclaim and recognition. Chief of Brahma Kumaris, Dadi Ratan Mohini Ji, and Additional Chief of Brahma Kumaris, Rajyogini Mohini Ji, or Additional Chief of Brahma Kumaris, Jayanti Didi Ji, ne felicitate kiya, Adarniya Rahul Sinha Ji ko. Aur aaj ka vishay, Vasudhaiva Kutumbakam ko lekar, is global summit mein jo aap pahunche ho, aapke vichar hamare samaksh rakhe, Adarniya Bhrata Rahul Sinha Ji.
सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो सम्मान मुझे दिया उसके लिए। मैं सोचकर तो नहीं आया था कि कुछ बात करनी है या कुछ बोलना है, लेकिन यहां आकर के सच बोलूं तो कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। और इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले 26-27 साल से, जब से इस क्षेत्र में हूं, पत्रकारिता के काम ही हम लोगों का बोलते रहने का है, लेकिन यहां आकर के जो सुकून और जो शांति मिल रही है, उससे एहसास होता है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया में आकर के जब हम इसको महसूस करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। मैंने शुरू से जिस तरीके की पत्रकारिता की उसमें तमाम तरीके की खबरें की हैं, लेकिन अध्यात्म से, सनातन से मेरा एक अलग तरीके का रिश्ता रहा है। और पत्रकारिता के जरिए भी मैंने कोशिश की। 2008 में मैं श्रीलंका गया था और भगवान राम से जुड़े जो कुछ सबूत दिखे थे उनको लेकर के यहां आया था। तो जब जब मैं सनातन और अध्यात्म के करीब पहुंचता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा आज फिर से मुझे मिल रही है। आप लोग जो काम कर रहे हैं ब्रह्म कुमारीज की तरफ से, जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। और खासतौर से जो नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, आज की नौजवान पीढ़ी को उससे दूर करना एक तरीके का एक यज्ञ है। और इसमें जो आप आहुति दे रहे हैं वो देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर कहूंगा कि जितना आप लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे उतना ही इस देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो संदेश आप लोग लेकर चल रहे हैं, खासतौर से योग का, साधना का, उसकी जरूरत आज के वक्त में हम सबको बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके के तनाव में, अलग अलग तरीके के वो तनाव हैं, वो मानसिक भी हो सकते हैं या बाकी और तरीके के तनाव भी हम देख रहे हैं। उसमें ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल सिन्हा जी। जैसे आपको यहाँ सुकून अनुभव हो रहा है आप कह रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का ज्ञान सारे विश्व में फैलाने में जरूर आप मदद करेंगे ही, क्योंकि आपको वहाँ अनुभव हो रहा है। और हमारे बीच श्री मुकेश माथुर जी भी पहुँचे हैं, स्टेट एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर से। आपका भी पहले फेलिसिटेशन होगा आदरणीय माथुर जी का। मैं उनका साइटेशन पढ़ती हूँ। राष्ट्र चेतना पुरस्कार प्रेजेंटेड टू मिस्टर मुकेश माथुर, स्टेट एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ ग्लोबल समिट 2024 ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। तालियां बजाकर हम फेलिसिटेशन भासुर जी का हो रहा है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। तो एट अवर शांतिवन कैंपस आबू रोड राजस्थान भारत फ्रॉम 4th to 7th October वी फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू प्रेजेंट यू विथ राष्ट्र चेतना पुरस्कार अवार्ड फॉर सिंसियर एंड डेडिकेटेड सर्विसेज इन प्रमोटिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ मीडिया। We recognize your commitment and high standards towards ethical and well-informed media and acknowledge your significant role in informing, educating and enlightening the masses. Your courage and resilience in overcoming different barriers and forging solutions out of challenges is worthy of due acclaim and recognition. Chief of Brahma Kumaris Rajyogini Dadi Pratan Mohini Ji, Additional Chief of Brahma Kumaris Rajyogini Mohini Didi Ji, एंड अभी फेलिसिटेशंस आदरणीय जयंती दीदी जी एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ने यहाँ किया। भाई जी आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने चंद विचार इस अवसर पर रखें। वसुधैव कुटुंबकम वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली।
नमस्कार, और जैसे राहुल जी ने आते ही धन्यवाद ज्ञापित किया, मैं भी करता हूं, क्योंकि हम पत्रकारों को आदत नहीं होती इस तरह के आयोजनों में मंच पर बैठने की। हम वहां बैठ के कवर कर रहे होते हैं आयोजनों को। तो मैं एक दैनिक अखबार में संपादक हूं और जयपुर में बैठता हूं, अलग अलग जगह रहा हूं। अक्सर हम लोग जब हमारे पाठकों से फीडबैक लेते हैं हमारे अखबार पर, खबरों पर और इस कंटेंट पर, तो एक चीज आती है हमेशा फीडबैक में कि भाई अखबार में क्या पढ़ें, रोज वही फ्रंट पेज पर हत्या, दुष्कर्म, लूटपाट, युद्ध, आजकल तो वही सब पढ़ने को मिलता है, तो क्या पढ़ें, मानसिक शांति भंग हो जाती है, ऐसा अक्सर फीडबैक आता है। तो सोचिए जब पाठकों को इतना ज्यादा उस नेगेटिविटी पे ऐसा रिएक्शन आता है, तो हम लोग जो उन खबरों को कर रहे हैं ग्राउंड पर जाकर या हमारे न्यूज रूम में, वो सारी खबरें हम कर रहे हैं और वो करने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो घट रहा है, जो सत्य है, उसको छिपाना अपने पाठकों से या दर्शकों से अन्याय हो सकता है, तो हमें वो कवर करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है वो सब। तो नेगेटिविटी को जीना पड़ता है रोज, जैसे कहा जाता है हर पत्रकार रोज कई जीवन जीता है, तो हम उन सारी खबरों को, सारी स्टोरीज को जीते हैं और उसमें बहुत सारी नेगेटिव खबरें होती है। वो नकारात्मकता, मैं एक पत्रकार के रूप में 25 साल से काम कर रहा हूं, तो उससे कैसे डील करना है, वो नकारात्मकता अगर मैं रोज जी रहा हूं तो कैसे मेरे जीवन में या मेरे व्यक्तित्व में या मेरे रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से आत्मसात होती चली जाएगी, उससे कैसे डील करना है, ये सवाल हम सारे पत्रकार अपने आप से रोज पूछते हैं। अब दूसरा एक संदर्भ देता हूं। हाल ही में कल मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द सैडिस्ट, रवि किशन जी ने अगर देखा हो तो, एक ट्रेलर चल रहा था द सैडिस्ट। तो इस छोटा सा ट्रेलर है, पूरी फिल्म क्या है पता नहीं है, बट उसको देख के ऐसा लगता है कि ये फिल्म का विषय वस्तु क्या हो सकती है, वो ये है कि
आजकल समाज में दूसरे को दुखी देखकर जो खुशी मिल रही है लोगों को, उस पर ये फिल्म बनी हुई है। दूसरा परेशान है, दूसरे के जीवन में कोई विपत्ति आ गई, तो मुझे जो एक तरह की खुशी जो मिल रही है, एक पार्श्विक खुशी जो मिल रही है और इस दृश्य का मैं आनंद ले रहा हूं, उस पर वो फिल्म बनी है। और ये सच है आज के समाज का, इस तरह से हम लोग बिहेव कर रहे हैं। आप देख लीजिए, युद्ध चल रहा है दुनिया में और तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़ी है दुनिया। मतलब गांधी जी की जयंती के दिन हम लोग बात कर रहे थे कि तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जा रही है और दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक इज़राइल पे हमले से खुशी मना रही है और दूसरी आधी दुनिया वो है जो हिजबुल्ला पे हमला हुआ है तो उस पर खुशी मना रही है। और कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि चाहे इधर हमला हो चाहे उधर हमला हो, कोई ना कोई इंसान मरेगा। तो नकारात्मकता को जिया जा रहा है, जो एक समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी का ये मंच, ये ब्रह्मा कुमारी का ये इकोसिस्टम, ये कैसे बड़ा बदलाव ला सकता है, ये सब लोगों को नजर आता है। मैं इंदौर में एडिटर था, वहां शिवानी दीदी आई हुई थी, मैंने उनको सुना। पहली बार एक मित्र के कहने पर गया, दूसरे दिन उनका दोबारा प्रोग्राम था, मैं फिर गया। मुझे लगा कि वो एक ही बात कहती हैं शिवानी दीदी, कि सामने वाला आपको गाली दे रहा है या सामने वाला आपके लिए बुरा सोच रहा है, उस पर आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उस पर खुद कैसे रिएक्ट करें, आप उस नकारात्मकता को अपने अंदर लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। तो अगर आप चाहें तो उस नकारात्मकता से बच सकते हैं उस पर रिएक्ट ना करके। तो उस बात ने मुझे, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि हम पत्रकार हैं और रोज नकारात्मकता को जीते हैं, तो उससे डील करने का वो रास्ता मुझे वहां शिवानी दीदी की उस बात में नजर आया कि सामने से कुछ हमला हो रहा है, आप पर कोई टिप्पणी हो रही है, हम पत्रकार हैं, हमें ट्रोल किया जाता है रोज, हमारी हर खबर पे एक पक्ष को ठीक लगती है, दूसरे पक्ष को वो खबर ठीक नहीं लगती तो वो रिएक्ट करता है, गालियां देता है, ट्रोल करता है, तो उसका जवाब कैसे दें? उसका जवाब ये दें कि उस पर रिएक्ट ना करें, और न सिर्फ रिएक्ट करें, उस नकारात्मकता को अपने अंदर घर भी ना बनाने दें। तो ये मैंने शिवानी दीदी से सीखा और ब्रह्म कुमारी जिस तरह से पूरी दुनिया में इसी संदेश को पहुंचा रही है और एक तरह का ये वातावरण बना रही है, मुझे लगता है आज के समय में ये नीड ऑफ द आर है, समय की मांग है। तो इस मंच पर, ऐसे इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
आदरणीय मुकेश माथुर जी ने आज की वस्तु स्थिति को अब हम सबके सामने रखा और जो शिवानी जी बता रहे थे, यही तो आध्यात्मिक शक्ति है और इसी आध्यात्मिक शक्ति का ब्रह्मा कुमारी प्रचार प्रसार प्रैक्टिस सब कुछ कर रही है। 1937 से यही हमारा प्रयत्न चल रहा है, तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर एक क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी बना सकेंगे। तो इसलिए आध्यात्मिकता आज की बहुत बहुत एक आवश्यक शक्ति है। और मैं अभी बुलाना चाहूँगी भ्राता प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। ही इज फाउंडर एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। आपका भी पहले फेलिसिटेशन होगा और उसके बाद आप भी आज के इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। भ्राता जी, इनको अवार्ड दिया जा रहा है गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रेजेंटेड टू प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, सोलार मैन ऑफ इंडिया, फाउंडर एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ ग्लोबल समिट 2024 ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी एट आर शांतिवन कैंपस आबू रोड राजस्थान भारत from 4th to 7th October 2024. We feel very proud and honored to present you with Guardian of Humanity Award for developing solar PV technologies and products. We recognize your efforts as the pioneer of social change and a great community leader. We sincerely acknowledge your dedication and commitment to raise awareness about environmental degradation and empower corrective actions. Your courage and resilience in overcoming different barriers and forging solutions out of challenges is worthy of due acclaim and recognition. Chief of Brahma Kumaris, Dadi Ratan Mohini, Additional Chief of Brahma Kumaris, Didi Mohini Ji, and respected Didi Jayanti Ji here felicitated you. So your insights on this.
ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय धामी जी, जयंती दीदी और सारे सम्मानीय गण और जो सामने मेरे बैठे हैं, सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारी को सादर आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये सम्मान दिया है। मैं एक IIT का प्रोफेसर हूं और प्रोफेसर का काम होता है प्रश्न पूछना, तो मैं आज एक छोटी सी क्लास लगाने वाला हूं सबकी। और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी क्लास में मुख्यमंत्री जी हैं, MPs हैं, मीडिया के लोग हैं, यहाँ आप सभी लोग हैं। मैं IIT का प्रोफेसर हूं और शादीशुदा हूं। मैंने 11 साल के लिए अपना घर छोड़ा, मैं एक यात्रा पर हूं, मेरी दो बेटियां भी हैं, एनर्जी स्वराज यात्रा पर हूं। लास्ट टाइम मैं जब अपने घर गया था तो 2020 था और अगली बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। और मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि एक शादीशुदा IIT का प्रोफेसर ऐसा क्यों कर सकता है। दो कारण हो सकते हैं, या तो व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया हो, या तो सच में कोई बहुत उचित कारण होगा। और मैं लोगों से पूछते रहता हूं कि मुझे देख के आपको लगता है मेरा स्क्रू ढीला है, तो अधिकतर लोग तो मना करते हैं, शायद मंच को देख के भी मुझे मेरा स्क्रू ढीला तो नहीं लग रहा होगा। इसलिए मैं जो आपकी छोटी सी क्लास लेने वाला हूं, मुझे लगता है ये हम सबके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मुझे यात्रा करते हुए आज 1408वां दिन है, मैं 1408 दिन से मैंने एक बस बनाई है। धामी जी आप जरूर आइए, रवि किशन जी आप भी आइए, बस में रहता हूं। मेरी बस में मेरा बेड है, वॉशरूम है, किचन है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, छोटा सा मंदिर है, गार्डन है, ट्रेनिंग रूम है। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको 10 बिंदु बताता हूं जल्दी से, समय की कमी। एक तो ये जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। ठंड जैसे था वैसे नहीं, गर्मी जैसे थी वैसे नहीं, बारिश जैसे थी वैसे नहीं। हम सब फील करते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि हो चुका है, हो चुका है, ये सब हो रहा है ऑलरेडी। जंगलों में आग लग रही है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, कनाडा के जंगल में आग लग रही है। मैं अपने पड़ोस में अपनी भट्ट जी से बात कर रहा था, मैं उत्तराखंड गया था, वहां के जंगलों में आग लग रही है। दुनिया भर में इतनी उथल पुथल है, आश्चर्य होता है ये इंसानों ने धरती को क्या कर दिया है। तो पहला पॉइंट याद रखने, जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। हर साल पहले साल से अलग है, हर गर्मी पहले गर्मी से अलग है, हम सब लोग फील कर सकते हैं। इसके लिए किसी वैज्ञानिक या प्रोफेसर की जरूरत नहीं। दूसरा, ये सब परिवर्तन के पीछे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है, वो है एनर्जी का उपयोग, या ठीक से कहें गलत एनर्जी का उपयोग। हम सब रॉन्ग एनर्जी का उपयोग करते हैं, कार्बन बेस्ड एनर्जी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, इतना प्रचार प्रसार होता है सोलर का, विंड का, बायोमास का, इतने बावजूद भी दुनिया का सिर्फ 20% एनर्जी कोल, सोलर एनर्जी, बायोमास हाइड्रो से आता है, 80% अभी भी कोयले से आता है। जब भी कोयला जलाते हैं, सिर्फ पेट्रोल डीजल जलाते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जिससे गर्मी बढ़ रही है। आज की तारीख में धरती के वातावरण में 52% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। मतलब इंसान लोग इतने खतरनाक प्राणी हो गए इस धरती पर, हमने अपने वातावरण को 52% बदल डाला है, और ये हम सब करते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो बिजनेस एज यूजुअल तौर तरीके हैं दुनिया के हल करने के, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया के पास तीन तरीके होते हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं, कौन पॉलिसी बनाता है, राज्य बनाते हैं, सरकारें बनाती हैं, यूनाइटेड नेशन बनाता है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन होते, 195 देशों ने साइन किया था कि सब लोग देश 2030 में अपना कार्बन एमिशन 45% कम कर लेंगे। ये 2015 में साइन हुआ तो मैं इतना खुश हुआ, 2016 में कार्बन एमिशन कम होगा, 17 में कम होगा, 18 में कम होगा। असलियत यह है कि हर साल कार्बन का उत्सर्जन पहले साल से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो तीन तरीके जो हमारे पॉलिसी बनाने के काम नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का वो भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे मिशन ले जा सकते हैं, किसी के हृदय में प्रॉब्लम चेंज कर सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम कम हो रही है, स्लो हो रही? नहीं, हर साल बढ़ती जा रही, मतलब टेक्नोलॉजी भी काम की नहीं है। और तीसरा जो हम काम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक प्रगति। भारत देश का जीडीपी 6-7% बढ़ रहा है, विश्व का जीडीपी 3-4% बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम कम हो रही? नहीं, प्रॉब्लम हर साल बढ़ती जा रही है। तो इकोनॉमी ग्रोथ, टेक्नोलॉजी बनाना और पॉलिसी बनाना, ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं। मैं धामी जी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि जरूर इस बात को प्रधानमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के हर प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए कि सामान्य तौर तरीके काम नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, ये किसने किया है? जलवायु परिवर्तन हो गया, पर किसने किया है, कौन जिम्मेदार है? मैं लोगों से पूछता हूं, पता है लोग क्या बोलते हैं? दीदी, मैं जब भी लोगों से पूछता हूं, बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया, तो पता है क्या बोलते हैं? इंसानों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। तो फिर मैं लोगों से पूछता, अच्छा आप इंसान हो क्या? आप इंसान हो ना, तो क्लाइमेट चेंज किसने किया है? फिर सुधर के बोलते हमने किया है। वो भी गलत है, हमने नहीं, क्योंकि जब हमने किया मतलब भगवान के भरोसे, मैंने किया है। हर उस व्यक्ति ने किया है जो एनर्जी का उपयोग करता है, मटेरियल का उपयोग करता है, सीमेंट, कंक्रीट, रोड, ये सब कारण है। हम सब क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। पांचवा पॉइंट, तो ठीक है, कब ठीक करेंगे? क्लाइमेट चेंज तो हो गया, ठीक कब करेंगे? आज और अभी करने की जरूरत है। बहुत सारी रिपोर्ट है, एक ग्लोबल वार्मिंग का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बताती है हमें 1.5 डिग्री धरती का तापमान बढ़ गया तो इरिवर्सिबल चेंज होना चालू होंगे, अपरिवर्तनीय परिवर्तन। उसके बाद दुनिया की हर ताकत आप लगा देंगे तो भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि रबर को एक समय तक खींचा जाए तो टूटता नहीं है, ज्यादा खींचा जाए तो टूट जाता है, इरिवर्सिबल चेंज होगा। मैं हमेशा कहता हूं 2 डिग्री जब तापमान होगा तो पूरा क्लाइमेट इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसके बाद दुनिया के सारे लोग साधु संत बन जाएं और डिसाइड करें कि आज के बाद धरती पर सिर्फ लंगोट पहन के जिएंगे, फिर भी क्लाइमेट को ठीक नहीं कर सकते। ये क्लाइमेट की लक्ष्मण रेखा है, यदि आप इसको कूद गए तो कभी वापस नहीं आ सकते। तो कब ठीक करना है? अभी ठीक करना चाहिए। पांचवा पॉइंट, तो कैसे ठीक करेंगे? हमें गलत एनर्जी से सही एनर्जी पे जाना पड़ेगा। हम सबको एनर्जी की आवश्यकता है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, कंफर्ट के लिए फैन चलाना है, लाइट चलाना है। तो गलत एनर्जी से सही एनर्जी पर जाना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी जो शाश्वत है, सत्य है, अनंत है, अथाह है, वो है सोलर ऊर्जा। हम सबको 100% सोलर ऊर्जा पर जाना पड़ेगा, 99% से काम नहीं चलेगा, 100% सोलर ऊर्जा पर जाना पड़ेगा। जिस तरह से देश में हम कर रहे हैं प्रचार प्रसार, उससे काम नहीं होने वाला। इतनी गति से सोलर पे अपनाया तो भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि 1.5 डिग्री तक जाने के लिए मात्र 5-6 साल 10 साल का समय बाकी है, 2 डिग्री के लिए 20-22-25 साल का समय बाकी है। तो ये राइट एनर्जी पे जाना पड़ेगा, पर ताबड़तोड़ जाना पड़ेगा। सातवां है, एक काम जरूर करना पड़ेगा, और इसमें मैं पूरे मंच का मैं ध्यान चाहता हूं, रवि किशन जी आपका भी ध्यान चाहता हूं। एक चीज जो दुनिया को समझ में नहीं आ रही है, हमारा साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ सकता है, इकोनॉमी भी आगे बढ़ सकता है, क्या धरती के साइज को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। क्या धरती पे पानी बढ़ा सकते? नहीं। मिट्टी बढ़ा सकते? नहीं। खनिज बढ़ा सकते? कुछ नहीं बढ़ा सकते। पर इंसानों को लगता नहीं नहीं, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए। जो धरती खुद फिक्स है बेचारी, जो उससे हम सारा सामान उसी से लेते हैं, जो खुद ही फिक्स है, हमारी बढ़ती हुई जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। यदि हम करेंगे तो पछताना पड़ेगा और इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो चूंकि धरती का साइज सीमित है, हमारी जरूरतों को सीमित करना चाहिए। मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, मैंने कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया, इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे, मैं कर सकता हूं, मैं खरीद सकता हूं, परंतु प्रश्न है क्या नेचर इसको अफोर्ड कर सकती है? और उत्तर, नेचर नहीं कर सकती, क्योंकि नेचर में सब कुछ सीमित है, सब कुछ फिक्स है। आठवां है, हमने एक बार लिमिट करना सीखा, अपनी जरूरतों को कम करना सीखा, फिर लोकलाइज करना पड़ेगा, लोकल बनाना पड़ेगा। हम केंद्रीयकरण में लगे हैं, और जब भी केंद्रीयकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, उसका रिजल्ट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनइक्विटी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, अशांति बढ़ती है। इसलिए समाज में साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, परंतु क्या भाईचारा बढ़ रहा है? क्या लोगों के बीच में प्रेम भाव बढ़ रहा है? क्या हिंसा बढ़ रही है? यस, अभी बता रहे थे हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम सेंट्रलाइज करते हैं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। ये प्रकृति का नियम है। एक जंगल में शेर कितना भी पावरफुल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि जंगल में सिर्फ अकेला शेर रहेगा। तो प्रकृति में लिमिट करना अपना नियम है। अच्छा, बंगाल टाइगर सिर्फ बंगाल में पाया जाएगा, चेन्नई में नहीं पाया जाएगा, लोकल करना प्रकृति का नियम है। तो लिमिट करना और लोकल करना, ये प्रकृति के नियम है, इसको हमें पालन करना ही पड़ेगा। एक नवा है, पॉइंट है, हमें AMG नियम का पालन करना चाहिए। यदि जीवन में सच में सस्टेनेबल होना है, क्लाइमेट के बारे में चिंता करना, रहने लायक धरती छोड़ के जाना है, AMG, इसको गांठ बांध के रख लेना आप। ए मतलब अवॉइड करो, जो अवॉइड कर सकते अवॉइड करो, सोलर भी मत करो। मैं सोलर का प्रोफेसर हूं, ब्रांड एम्बेसडर हूं,
लोग मुझे सोलर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, सोलर गांधी बोलते हैं, पर मैं बोलता हूं सोलर एनर्जी को उपयोग करने का पहला नियम है सोलर का उपयोग मत करो। मैंने पीएचडी किया है, किताबें लिखी है, क्योंकि सोलर बनाने में भी जमीन को खोदना पड़ेगा, सिलिकॉन निकालना पड़ेगा, उसके लिए ग्लास बनाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम फ्रेम बनाना पड़ेगी, वायर का कॉपर केबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इन्वर्टर बनाना पड़ेगा, सब करने में जमीन खोदेंगे, केमिकल लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, उसका साइड इफेक्ट होगा। सोलर कोयले की तुलना में बहुत अच्छा है, परंतु जीरो इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, इसलिए सोलर भी अवॉइड करो, अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। ऐसे उपकरण का उपयोग करो जो कम एनर्जी में चलते हैं, बहुत कम एनर्जी में चलने वाले एलईडी लाइट है, बीएलडीसी फैन है, 5-star रेटेड अप्लायंस है, मिनिमाइज करो। और मिनिमाइज नहीं कर सकते तो आखिरी काम जनरेशन का होना चाहिए, आखिरी काम। और हम सब क्या कर रहे हैं दुनिया भर में, देश में, सबसे पहले सोलर लगाने का, नहीं, सोलर का भी साइड इफेक्ट है। AMG याद रहेगा सबको, ए मतलब अवॉइड, एम मतलब मिनिमाइज, जी मतलब जनरेट। AMG नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमको कहना पड़ेगा OMG, ओ माय गॉड, सोलर कितना महंगा, छत पे जगह नहीं। और AMG नियम का पालन करेंगे तो एनर्जी में स्वराज आएगा, एनर्जी में आत्मनिर्भरता आएगा। आप लोगों को पता नहीं होगा भारत देश का हर साल का खर्चा एनर्जी लाने का 16-17 लाख करोड़ होता है, बहुत सारा डॉलर्स लगता है। और डॉलर नहीं होगा तो हमारी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। हम सबको एनर्जी में आत्मनिर्भरता या एनर्जी स्वराज की तरफ जाना ही पड़ेगा। वो हम इंडिविजुअल जब बनेंगे आत्मनिर्भर तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, गायत्री परिवार का मंत्र है ना, हम सुधरे तो युग सुधरेगा। और एक आखिरी पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज मैंने किया है इसलिए ठीक भी मुझे ही करना पड़ेगा, सरकारों की पॉलिसी से ये नहीं हो सकता। तो हम सबको इसमें जिम्मेदार लेना पड़ेगा, और इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बच्चों को जीने लायक धरती छोड़ के जाना चाहता हूं। जितने लोग बैठे हैं, क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा बिना फिल्टर का पानी पी सके? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा बिना केमिकल का खाना खा सके? और क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा शुद्ध हवा को सांस ले सके? ये हम करेंगे तब जाके एक बच्चों को जीने लायक धरती छोड़ के जाएंगे। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, जो 50-60 साल की उम्र के लोग विधि बोलता हूं, वो आने वाले 20-30 साल में धरती से चले जाएंगे। जो बेचारे छोटे बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज, उनको यहां पर धरती पर लंबे समय तक रहना है, लंबे समय तक भुगतना है, तो उनको हमें, तो ये 10 पॉइंट यदि हम सीख जाए, और मैं माननीय धामी जी की माध्यम से और पत्रकार महोदय के माध्यम से पूरे विश्व में पहचाना चाहता हूं, ये 10 पॉइंट हमारे जीवन जीने का मूल है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान है और गांव से आने वाले, गांव के रहने वाले मेरे पिताजी यहां पर हैं, उनका यदि आप सब लोग तहे दिल से ताली बजा के स्वागत करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।
भ्राता सोलंकी जी, हम आपकी दिल की भावनाएं समझ रहे हैं और आपका मैसेज सारा, इतना ये जो मंच बैठा हुआ है यह भी समझ रहा है, और आप करेक्ट स्थान पर पहुंचे हो। जरूर इसके उपलक्ष्य में इतने बड़ी जो दीदी और भाई हमारे बैठे हैं गवर्नमेंट के, वो जरूर इसके ऊपर जरूर प्रयास जो है वो करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच भ्राता डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल एंड मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ कार्डियक साइंसेस दिल्ली। तो इस अवसर पर वे ग्रीटिंग्स देंगे, वो खुद राजयोग का अभ्यास करते हैं और कैसे हम योग के द्वारा रोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, इनकी बहुत ये स्पेशलाइजेशन है खुद इस सब्जेक्ट के। लेकिन अभी यहाँ इस मंच पर वह मोस्टली मे बी आई डोंट थिंक वह विषय लेने वाले हैं। ही विल बी डूइंग टॉकिंग टू अस ऑन वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी।
ओम शांति। सम्मानीय मंच और मेरे प्रिय दोस्तों, भावनाओं के सागर में मैं कुछ शब्दों की माला पिरोकर लाया हूं। दोस्तों, आज कुछ सुनने का दिवस नहीं है, आज बनने और परिवर्तन का दिवस है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां अपने मन को ताके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां अपने मन को ताके कौन, दुनिया सुधरे जग सुधरे खुद को आज सुधारे कौन, दुनिया सुधरे जग सुधरे खुद को आज सुधारे कौन। दोस्तों, भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे खुद पर आज विचारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा ये सीधी बात विचारे कौन। दोस्तों, संसार का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, वासुदेव कुटुंब कम, ये केवल दोस्तों शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं और संकल्पों का परिवर्तन की कहानी है। दोस्तों, यदि हमारा संकल्प परिवर्तित होता है तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है, जब हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है तो हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है और हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, ये संसार का परिवर्तन, संसार के अंदर खुशी, दोस्तों ये केवल हमारे भाव स्वभाव नहीं, हमारे संकल्पों के परिवर्तन का खेल है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर और अद्भुत कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के 3 संदेशों को लेकर दोस्तों अपने साथ जाइएगा। यदि इन बातों को हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन परिवर्तित तो दोस्तों हो जाएगा। एक कहानी एक राजा की है जिसके मन में केवल 3 प्रश्न थे कि भगवान मिलता कैसे है, उसका दूसरा प्रश्न था भगवान करता क्या है, और उसका तीसरा प्रश्न था भगवान की अद्भुत शक्ति क्या है। दोस्तों, कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो राजगुरु के एक छोटे से बच्चे ने कहा कि पिताजी, आपके प्रश्नों का, राजा के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, मुझे राजदरबार में ले चलिए। वो वहां पर लेकर आया और वो बच्चा आकर वहां पर खड़ा हुआ। राजा ने कहा, बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर। उस बच्चे ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में अतिथि आया है, आप मेरा सत्कार नहीं करेंगे। राजा एकदम हैरान हुआ और उसने फट से एक दूध का ग्लास मंगवाया और उस बच्चे के सामने रख दिया, और बच्चे ने मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ में लिया और अपनी उंगली लेकर उस दूध के ग्लास के अंदर फिराने लगा। उस राजा ने बोला, क्या कर रहे हो बच्चे? उसने कहा, इस दूध के अंदर मक्खन को ढूंढ रहा हूं। तो राजा हैरान, उसने कहा, इस दूध के अंदर मक्खन निकल सकता है लेकिन अभी दूध है ये। तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमात्मा सदा है, उसकी शक्ति सदा है, लेकिन आज हम परमात्मा को महसूस करने की, उसको अपने जीवन में लाने के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। अपने ज्ञान को हम सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, लेकिन मंथन करके उस मग्न अवस्था को नहीं पाते हैं, इसलिए परमात्मा शक्ति का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज पूरा विश्व परमात्मा को केवल डर के कारण याद करता है, लेकिन दोस्तों परमात्मा केवल प्यार का सागर है। जब हम प्यार से परमात्मा के साथ संकल्पों के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन, हमारे संबंधों को परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, घर घर को सतयुग बना देता है, वासुदेव कुटुंब कम की जो हमारा भावनाएं हैं उसको साकार कर देता है। राजा बहुत खुश हुआ, उसने कहा, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान करता क्या है। उसने कहा, आइए मेरे साथ, और एक अंधेरे कमरे में उसे ले गया। उस अंधेरे कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा था और उस बच्चे ने एक दिया लिया और दिए को जला दिया। जैसे ही दिया जलाया तो वो कमरा प्रकाशवान हो गया। उस राजा ने कहा कि ये क्या? उसने कहा, परमात्मा की यही शक्ति है कि जहां अंधकार है वहां वो उजाला कर देता है। आज हमारे मन के अंदर अंधेरा हो चुका है, हमारे मन के अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, कंपटीशन है, क्रिटिसिज्म है, आज ऐसे विचारों के साथ हमारा जीवन चल रहा है। परमात्मा इन सब विकारों को, इन नेगेटिविटीज को समाप्त करके घर घर को उजागर कर देता है। जो जितना क्लोज परमात्मा के साथ होता है उतना ही उसको शक्तियों की प्राप्ति होती है। राजा हैरान हो गया, उसने उसे गले लगा लिया और उसने कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। राज दरबार में आ गए थे तो राजा ऊपर बैठा था, बच्चा नीचे खड़ा था। बच्चे ने प्यार से कहा कि महाराज, आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मुझसे शिष्य बनकर पूछ रहे हैं या राजा बनकर पूछ रहे हैं? राजा का शर्म सिर से झुक गया और एकदम वो अपने गद्दी से उठा और गद्दी से उठकर नीचे आया और कहा कि बच्चे, आप ऊपर जाके बैठिए। बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर जाकर बैठता हूं, और ऊपर जाकर वो बैठ गया। और राजा ने कहा, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान करता क्या है। उसने कहा, अभी भी मुझे देने की उत्तर की जरूरत है? देखिए ना, आप नीचे हैं, मैं ऊपर हूं, भगवान राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की शक्ति रखता है। दोस्तों, ये है परमात्मा की शक्ति। यदि आज हम परमात्मा को अपने जीवन में स्टीयरिंग व्हील की तरह नहीं, दोस्तों अगर स्टीयर व्हील की तरह नहीं, स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं उसकी शक्तियों को, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। दोस्तों, आज इस मंच से मैं केवल आपको एक संदेश देकर जाऊंगा। दोस्तों, ये जीवन के अंदर सम्मेलन होते रहेंगे, पॉलिसीज बनती रहेंगी, दोस्तों पत्र छपते रहेंगे, हम भागते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आज जरूरत है अपने जीवन को परिवर्तन करने की, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की। और मेरा केवल एक संदेश है दोस्तों कि आज का ये दिन आपके जीवन का पहला दिन होगा।
आज के बाद आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे केवल आपके विचारों आपके संकल्पों के ऊपर निर्भर करेगा। दोस्तों, एक विचार के परिवर्तन से ही हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। केवल 20 मिनट रोज परमात्मा के लिए निकालिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए निकालिए दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जब घर घर सत्ययुग होगा और मन मन भी सत्ययुग होगा। शुक्रिया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का। और डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन है डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन कैप्सूल। ओके, सो सभी इस कैप्सूल को रोज खाना। और आज अभी हमारे बीच में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बैठे हुए हैं, भ्राता श्री पुष्कर सिंह धामी जी। वो उस स्थान से हैं उत्तराखंड जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे सारे तीर्थ स्थानों की वह भूमि, उस भूमि से पधारे आदरणीय भ्राता जी, धामी जी। अभी हम निवेदन करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के, कि आज के इस विषय पर आप चीफ गेस्ट हैं आज के इस प्लीनरी सेशन के, तो अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड से।
भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में मंच पर आसीन अतिरिक्त प्रशासिका दीदी बीके जयंती दी, हमारे भारत सरकार के मंत्री रेलवे और फूड प्रोसेसिंग के श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, गोरखपुर से लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन बहुत सारे विषयों पर जिन्होंने यहाँ पर, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ मंच पर एक से एक विभूतियाँ, और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। आपने देखा होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, अगर आपने माथुर जी को सुना, सिन्हा जी को सुना, फिर हमने सोलंकी जी को सुना, डॉक्टर मोहित जी को सुना, तो सभी महानुभाव, और हमारे राधेश्याम जी जिन्होंने हम सब का स्वागत किया, और मेहरचंद जी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में जो अनेक अनेक काम आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं और पूरे विश्व भर से इस वैश्विक सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे विद्वानगण, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का और दीदी जिन्होंने बीके अंजलि बहन जिन्होंने इस मंच को और हम सबको एक दूसरे से पूरी तरह से जोड़कर रखा है, एक सेतु का काम कर रही हैं, बहुत शानदार उनके द्वारा यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी तरफ से सबका अभिनंदन करता हूं, और देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अभी दीदी अंजलि बहन ने बताया कि मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूं और उत्तराखंड राज्य जिसको देवों की भूमि कहा जाता है और जिनके हर कण कण में शंकर का वास है। हमारा प्रदेश जहां एक ओर प्राकृतिक रूप से सुरम्य है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट भी है और विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आकर, देवभूमि में आकर स्वयं की खोज करते हैं, यानी स्वयं को साधना में लगाते हैं, अपना शोधन करते हैं, हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं। जैसा अभी मोहित जी ने, यहाँ पर डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें। और ऐसे प्रदेश से आकर जहाँ कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर स्थान देवों से आच्छादित है। हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। और ऐसे देवभूमि से आकर आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ, लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ, और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी, और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहाँ पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं सोचता था बहुत बार, राहुल जी मैं कई बार माथुर साहब मैंने सोचा कि मैं जरूर जो है जाऊं, मन में बहुत इच्छा हुई। और ऐसे ही बगल में सालासर बाबा जी, वहाँ भी बहुत सारे हमारे मित्रगण कहते थे कि आपको आना चाहिए, एक बार दर्शन करने चाहिए, और मन में इच्छा भी थी, रवि भाई आप तो स्वयं बाबा की धरती से आए हो। तो बहुत बार प्रयास किया और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैं समझता हूँ एक अनुभव भी है, और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा कि अचानक ऐसा कार्यक्रम बना और हमारे मेहरचंद जी और नीलम दीदी और ये लोग सब, रक्षाबंधन के दिन हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और ये हमारे विधानसभा में आए, मुझे इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, और उस दिन मेहरचंद जी ने कहा कि इस बार आपको अवश्य चलना है हमारे साथ। और एक उमेश भाई जी थे, वो बहुत सालों से कहते थे, मुझे उनका भी ध्यान आया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, और सारा उपक्रम इस प्रकार से बन गया कि मैं यहाँ पहुँच गया और सालासर बालाजी के भी दर्शन हो गए और आप सबके भी दर्शन हो गए, बाबा जी के इस पवित्र स्थान पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरा कहने का आशय है कि मोहित जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि स्वयं को खोजना है, आज से नए दिन की शुरुआत करनी है, वास्तव में उनके बड़ा प्रेरक था। लेकिन सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहाँ पहुँचे हैं उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं कल सच बताऊं तो आज मैं भी इस स्थान पर कोई बहुत ओरिएटर बन के या भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। बिट्टू जी कह रहे थे कि मुझे आपको सुनना है, हमारे रवि भाई कह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी आता हूं, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो भाइयों जैसे हम लोगों के संबंध हैं, हम लोगों के आपस में इस प्रकार के रिश्ते हैं। तो मैं सच बताऊं तो आप लोगों के बीच में मैं भी आज एक जिज्ञासु बनकर आया हूं, और मैं सौभाग्य से कल सायंकाल से ही आप सबके बीच में हूं, और यहां आने के बाद मुझे अपने भीतर भी एक विशिष्ट प्रकार की आत्मिक शांति की जो है अनुभूति हो रही है। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है, और इस स्थान की महत्ता भी है, और राजयोगिनी दीदी मां रतन मोहिनी जी से जो स्नेह यहां पर मिलता है वह भी इसका एक बड़ा कारण है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह संस्थान विश्व के कोने कोने में, आज विश्व के अनेक देशों में आज शांति और सद्भाव और मानवता का संदेश देने का काम कर रहा है। सच में लोगों को उनको स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहां स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए ही आया हूं। हम इन मूल्यों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे एकीकृत कर सकते हैं, ताकि सभी के लिए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का, बेहतर परिवेश का निर्माण कर सकें। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार आप सबके समक्ष रखे हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, पर मैं आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो इसका विषय भी रखा है कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है वसुधैव कुटुंबकम। आज जब पूरा विश्व, अभी माथुर जी बहुत शानदार यहां से बोल रहे थे और वही मैं भी सोच रहा था कि आज विश्व पूरा विभिन्न युद्धों से घिरा हुआ है, और लोग वास्तव में तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें कहा गया है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। क्या संदेश ये विश्व की शांति के लिए केवल एक शांति का उपदेश नहीं है, बल्कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है, जिसे अगर आज हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, और जिसको आज हम नहीं समझेंगे तो कल हमको अवश्य ही इसको समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार का आज आपाधापी का काल है, इस युग में सार्वभौमिक रूप से भाईचारे की और परस्पर जुड़ाव का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने बहुत सारी सुख सुविधाएं अपनी दुनिया तो बना ली है, परंतु इस भौतिक प्रकृति की खोज में हम सच में जो हमारी सच्ची खुशी है वो, और आंतरिक जो शांति है उसको भूल गए हैं। और सोलंकी जी, आपने बहुत विस्तार से इसको बताया, सच में हमारा प्रयास होगा कि आगे चलकर किसी न किसी रूप में, और क्योंकि ये काम हमने शुरू किया है अभी उत्तराखंड में, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर हमने जीईपी लागू किया है, क्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना हम विकास कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या कीमत चुका रहे हैं। और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन बना रहे, जो आपने कहा कि धरती की एक सीमा है, और वास्तव में वो सीमा जब क्रॉस होती है तो प्रकृति जब भी उसके साथ जोर जबरदस्ती होती है तो प्रकृति किसी न किसी रूप में हम रिएक्शन करती है। मेरा मानना है कि यहीं पर जो आध्यात्मिकता महत्व आध्यात्मिकता है, और जिस प्रकार का हमारा ओम शांति के सभी लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस प्रकार से ये नई टेक्नोलॉजी हमें भौतिक सुख प्रदान करती है, उसी तरह आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है तथा हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन, बैलेंस बनाने का काम करती है। और वर्तमान की जो भागदौड़ भरी दिनचर्या में जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, संस्कार हैं और आत्म प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण जो पहलू है, वो हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था जो लोगों का पथ प्रदर्शित कर रही है और पूरे विश्व के अंदर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। और ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी सभी बहनें और भाइयों द्वारा अध्यात्म और जीने की कला से जुड़े अनेक कठिन विषयों को जिस प्रकार से बहुत ही सामान्य शब्दों में, या मैं कहूँ कि बहुत सरल शब्दों में लोगों को बताया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनके अंदर ये भाव डाले जाते हैं, उससे आम जन्मासन में भी आसानी से इन विषयों को समझकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन से आने वाले जो सकारात्मक बदलावों को सच बताऊं तो ये जो इस प्रकार के बदलाव हैं, ये मैंने स्वयं अपने जीवन में भी इसको बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। और आध्यात्मिकता को मैं एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा के रूप में भी देखता हूँ, जो हमें स्वयं के भीतर झांकने, ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने और सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा और सम्मान जैसे जो मूल्य हैं उनको अपने अंदर विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक और चिंतनशील बनता है तो वह अपने आसपास के परिवेश को, पर्यावरण को और सभी प्राणियों को, उनके प्रति भी उसके मन में एक जिम्मेदारी का भाव आता है, उसको वो जीने लगता है और महसूस करने लगता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपने अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ और स्वस्थ होने लगता है और हमारा जो भी संकल्प होता है वो संकल्प भी मजबूत होता है। हमें यह समझ आने लगता है कि वास्तव में ये आध्यात्मिकता जीवन की एक आवश्यकता नहीं है, एक केवल आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बता दिया, हम अपने कुछ लोगों के कहने से करना शुरू कर दिया। मैं यही कहूँगा कि यह जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। भाइयों बहनों, आध्यात्मिकता ही वो शक्ति है जो समाज को बाहरी और भीतरी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने का सामर्थ्य भी प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके और कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानूनों से और अन्य तरीकों से इसको जो है कर पाए, बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम अपने जीवन के हर पहलू में इसको जब शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको पूर्णता की ओर प्राप्त होंगे। आज हम बहुत सारे जो जलवायु परिवर्तन जैसे विषय हैं, एकदम से जब जिस समय बरसात का मौसम नहीं होता है उस समय बरसात हो जा रही है, जब सर्दी पड़नी चाहिए सर्दी पड़ रही है। अगर इस साल अगर आप देखेंगे तो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि जो पिछले साल जितनी गर्मी थी उससे ज़्यादा टेम्परेचर इस साल बढ़ा है। और हमारी जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, इसमें इनके द्वारा जो प्रदान किया जाने वाला राजयोग ही हमें अत्यंत आवश्यकता है। और राजयोग के जो प्रणेता स्वयं योगीधिराज भगवान शिव थे। अध्यात्म का स्वरूप और प्रभाव इतना बृहद है कि हम जितनी भी इसकी चर्चा करें इसके लिए तो पूरा जीवन लग जाता है। कुछ ही समय में, कुछ मिनटों में इसकी चर्चा वास्तव में उस प्रकार से नहीं हो सकती है। पर आज के अवसर पर मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता ही वो डोर है जो हमें और हमारे समाज को आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों रूपों में स्वच्छ बनाने में सहायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बृहद सम्मेलन आप सभी के विचारों और सहभागिता द्वारा एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के विकास और जीवन में आध्यात्मिक उत्थान के नए आयाम स्थापित करने में अवश्य ही सफल होगा और निश्चित रूप से मैं आज पहले से हमारे मेहर भाई ने मुझे कहा था कि हमको जो है यहाँ पहुँचकर पांडव भवन और माउंट आबू एवं ज्ञान सरोवर भी जाना था लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं आप सबसे जरूर कह रहा हूँ कि अगली बार मैं फिर पुनः यहाँ आऊँगा और सभी अपने साथियों के साथ पांडव भवन ज्ञान सरोवर की यात्रा भी करूँगा ताकि ये जो हमारी पवित्र स्थली है शक्ति और दिव्यता इसका भी हम गहराई से अनुभव कर पाएंगे। अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ ब्रह्म कुमारी का ये कार्य सिर्फ सेवा नहीं है बल्कि कल शाम को हम लोग जब मैं और महेंद्र भट्ट जी शाम को काफ़ी सत्संग हमने किया तो एक बात समझ में आई कि ये एक नवयुग से नवयुग यानी कलयुग से सतयुग की पुनर्स्थापना का महान कार्य है। और कल रात्रि को ही हमारी मुलाकात वरिष्ठ राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी से भी मुख्य प्रशासिका ब्रह्म कुमारी से भी हुई जिसे जिनसे मिलकर बहुत ही प्रेरणा मिली और बहुत खुशी हुई। अंत में आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का मुझे भी सौसर देने के लिए मैं आप सबका दिल से और राजयोगिनी दादी माँ का और समस्त परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सतयुग में अब तुम्हें आना है,
ओम शांति। भ्राता जी ने, धामी जी ने इतना सुंदर प्रेरणाएं, इंस्पिरेशंस दिए। महान व्यक्तियों की यही पहचान होती है कि वे सब में महानता देखते हैं। तो सारे ही जो यहाँ उपस्थित, स्टेज पर उपस्थित भाई बहने क्यों न हो, या आप सभा में उपस्थित हैं, सबके लिए उन्होंने महिमा के शब्द कहे, ये उनकी खुद की महानता है। और साथ साथ भ्राता जी ने राखी के अवसर पर जो बहनों ने राखी बांधी, और ब्रह्मा कुमारी बहनें खर्ची मांगती है 5 खोटे पैसे और 1 आना। 5 खोटे पैसे जो पैसे काम के नहीं है, और वो है हमारे 5 विकार। और 1 आना मतलब कि आश्रम को 1 बार आना। तो भ्राता जी ने वो खर्ची भी हमको दी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो आश्रम को 1 बार हर रोज आना, वो है खर्ची। तो और काफ़ी खर्ची आपको हमें देनी है, और बार बार जरूर आप विजिट करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि आध्यात्मिकता आज की आवश्यकता नहीं लेकिन अनिवार्यता है। तो उस चीज़ को समझकर, और भ्राता जी ने जो हमको कहा, हम सबको भी आध्यात्मिकता के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भ्राता जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आमंत्रण देती हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा गोरखपुर से आए हुए भ्राता श्री रवि किशन जी को। रवि किशन जी, वैसे रविंद्र किशन शुक्ला जी है नाम इनका, और साथ साथ खुद एक्टर भी है। और मैं हैदराबाद से हूँ, इसलिए मुझे आश्चर्य लगा कि भ्राता जी ने तेलुगु सिनेमा में भी काम किया है, तेलुगु में और साउथ कनाडा तमिल सिनेमा में भी। तो आप चंद शब्द सभा के सम्मुख रखें।
ओम शांति। देवभूमि से आए हम सबके बड़े ही प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत सुंदर बातें अभी अपने सामने रखी, माननीय श्री पुष्कर भाई साहब, जो बहुत अक्सर मुझे बहुत प्रेम देते हैं जब भी मैं उत्तराखंड में आपके सानिध्य में रहता हूं। धन्यवाद भाई साहब। और आपके स्वभावों में जरा भी बदलाव नहीं आया, इससे पता चलता है कि देवभूमि और अध्यात्म को आप कितना समझते हैं, और कितना आपकी माता जी खुद ही एक पार्वती माँ के रूप में है। मैं आपकी माता जी से मिला हूँ, उनका आशीर्वाद लिया हूँ, तो वो असर आप में देख के बड़ा हमको आनंद आता है। और आपकी माता जी का उत्तेजमय चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। बड़े भाग्यशाली पुत्र हैं आप, आपका स्वागत। जितनी हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदी हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। राजयोगिनी बीके मुनि दी, प्रोफेसर चेतन सिंह जी, हमारे अजीज मित्र हमारे साथ लोकसभा में थे, और चमत्कार जैसे होता है, पहले आप कांग्रेस में थे, जब ईश्वर की कृपा होती है ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, तुरंत भाजपा में आए और आज मंत्रालय और इतने बड़ा मंत्री पद। तो चमत्कार देखिए, शिव जी की कृपा होती है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि नहीं होती। कांग्रेस से भाजपा में आते ही मंत्रालय, वो भी केंद्र सरकार में, ये अच्छे प्रारब्ध है और इनके सुंदर आत्मा का आशीर्वाद है। और आज हमारे बगल में बैठे थे, पहले सामने बैठते थे, आज मंत्रालय के साथ। यही ईश्वर की लीला है, कब वो किसको क्या प्रसाद दे दे, कब आत्मा में परिवर्तन आए, कब सोच चिंतन के साथ बदले, और कब प्रसाद मिले, किस रूप में मिले, और कितना बड़ा मिले और बहुत ही सम्मानीय और बहुत फकीर नुमा इनका स्वभाव है और अभी भी फकीरियत ही उनमें झलकती है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और ये आपने कलाकार हूं ना मैं, तो मैं पढ़ता हूँ चेहरे को, कलाकार हूं मैं, स्वभाव आत्मा को पढ़ता हूँ, आवरण को नहीं पढ़ता, मैं आत्माओं को पढ़ता हूँ। तो यही माँ भगवती की कृपा है हम पर, यही तो ऐसे हमरे रवनीत सिंह बिट्टू जी, राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के चेहरे पर जो तेज है उसको देख के बहुत अच्छा आपको लगा। ये सारी यही सुंदरता है इस जगह की और इस ओम नाम के जपने की, ओमकार नाम को जपने की, शिव जी की कृपा, यही शिव बाबा की कृपा है और वही आनंद आप देख रहे हैं। सभी महानुभाव, सभी लोग, महेंद्र भट्ट जी से ले चेतन भगत जी, मधु वरुणमयी ग्रुप के माउंट आबू से बीके राधेश्याम जी, राहुल सिन्हा जी हमारे जो बहुत जी के बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मुकेश माथुर जी दैनिक भास्कर से आपको हम जानते हैं, बहुत सीनियर हैं आप, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इतना सुंदर बोले तो ये पता चलता होगा कितने सुंदर तरह से ये ऑपरेशन करते होंगे दिल का। मेहर चंद जी, सारे श्री विद्या जी, सभी मनोभाव और बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे गोरखपुर से दो विधायक हैं जो जनता को बड़ी सेवा करते हैं और यहाँ देख के उनको मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मेरे सामने बैठे थे कि मैंने सेवा करते देखा था, अध्यात्म से जुड़े हैं, आज वो दोनों को देख के और मेरे मन में इनके प्रति आदर आ गया। ऐसे माननीय प्रदीप शुक्ल जी सहजनवा गोरखपुर के विधायक, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी हमारे पिपराइच के बहुत लोकप्रिय विधायक और दूसरी बार के महाराज जी के बहुत पूज्य योगी महाराज जी के करीब हैं, लेकिन अध्यात्म के करीब हैं, अध्यात्म को जानना चाह रहे हैं, ये आज देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रमुख जी भी हैं मुन्ना सिंह रजई, बहुत कर्मठ हमारे कार्यकर्ता और प्रमुख जी हैं, आप सबको देख के हमको बड़ा सरप्राइज भी लगा, हमको नहीं, हम के नहीं लगल रहे हो कि अध्यात्म की और भी आप लोगों का रुचि बा, हम के लगल खाली सेवा में, लेकिन आज ही पाके हैं हमारी ब्रह्म का हमारी दीदी जी पारुल दीदी जी को मैं धन्यवाद देना, मैं यहाँ पर हूँ आपको जानना चाहिए। मैं पारुल दीदी ने 6 साल से हमको कहा था कि अब भाई साहब आपको आना है और माता रानी की कृपा रही, मैं प्रचार में था हरियाणा से, मैं अहमदाबाद आया, अहमदाबाद में कुछ कार्य थे, सब पूजा पाठ के वो हो गए और मैं आज यहाँ सुबह आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात। आप यहाँ खड़े हैं, मुझे लोग नहीं देख पा रहे हैं, सबने कितनी सुंदर बातें कही, कितना अच्छा लगता है। देखिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, यही साइलेंस ही हम ढूंढने आए थे, साइलेंस ही, ये जो पॉज होता है ना जीवन का, पॉज रुक जाना, यही लोग नहीं समझ पाते। लोग निरंतर ऐसे जैसे कुछ पाना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, मैं कला के क्षेत्र में देख रहा हूँ, राजनीति में देख रहा हूँ, भाग रहे हैं, मनुष्य को देख रहा हूँ, बिजनेस में देख रहा हूँ, लाइफ में यूथ को देख रहा हूँ, युवा को देख रहा हूँ, विश्व में देख रहा हूँ, ना कि भारत में, भाग रहे हैं मर रहे हैं, भाग रहे हैं हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, भाग रहे हैं एक दिन गिर जा रहे हैं, भाग रहे हैं मर गए, क्या थे कल जिंदा थे आज मर गए, क्या थे चल रहे थे लेट गए। अरे भाई कुछ पा रहे थे, तुमने तो कहा था हम ब्रह्मांड लेंगे, हम जहाज बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो ध्रुव तारा तोड़ लेंगे स्पेस, और सडनली लेट गए जमीन पर, 150 रुपए का कफन सफेद कलर का, 10-12 हजार रुपए में लकड़ी उकड़ी अच्छा घी डाल के 10-12 हजार बढ़िया, अगर थोड़ा पैसा है तो 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा है, बड़ा अय्याशी के साथ, बढ़िया घी डालेंगे, अच्छी लकड़ी रहेगी, कितना 10 से 12 हजार रुपया यही चाहिए। लेकिन आदमी मर जा रहा है, थक रहे हैं तो शराब पी रहे हैं, थक रहे हैं तो शराब पी रहे हैं, शराब क्यों पी रहे हैं, नहीं नहीं संबंध बनेंगे भाई, बैठना है, ग्लास लेना है, कोई मतलब नहीं, नींद आने के लिए नशा ले रहे हैं, नींद की गोली रहे हैं, ड्रग्स आ गया है, नार्कोटिक्स ड्रग्स, ड्रग्स ने रूप बदल लिया है। हमने पार्लियामेंट में पहली बार भारत के पार्लियामेंट में ड्रग्स पर हमने बात की, नार्कोटिक्स पर, हम पर विरोधियों ने बहुत प्रहार किया, फिल्म वालों ने भी किया, मेरी फर्टिनिटी के लोगों ने, 15 दिन हम सुर्खियों में रहे। मैंने नार्कोटिक्स ड्रग्स की बात की, अपने बच्चों को बचाने, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, देश के बच्चों को, धरती के बच्चों को, कि ड्रग्स क्या है, कहां से आता है, क्यों आता है, स्कूल के पास बिकता है, स्कूल के कैंपस में बिकता है, बगल में बिकता है, हर बंबई शहर ही नहीं पूरे देश में बिकता है, गांव में ज्यादा नशा करते हैं। वो समय गया कि शहरी बर्बाद है, नहीं, गांव भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, लिटरेचर नहीं है, शिक्षा हो रही है, हाथ में आप मोबाइल भी दे दे रहे हो तो बच्चा डिजिटली बर्बाद भी हो रहा है, और अध्यात्म से इसको रियल ज्ञान भी नहीं है, महसूस करवा ही नहीं रहे हो कि ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है, आप खाली शब्दों से प्रवचन दे दे रहे हो, महसूस करवाओ कि क्यों सूर्य आते हैं, कैसे चंद्रमा हुआ, कैसे नेचर बदला, कैसे पर्यावरण हुआ, कैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, कैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, कैसे धरती के सीने पर रोज हथौड़ी मारा जा रहा है और धरती को रोज छेद किया जा रहा है। तो मृत्यु तो तय है, प्रलय तो आएगा, पर्यावरण को कर रहे हैं, बनाओ बिल्डिंग, कमाना है, पैसे पैसे पैसे, धरती के छाती पे हथौड़ा, बड़े बड़े बुलडोजर, खून निकल रहा है धरती का, चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि उन्होंने, उस बिल्डर ने या उस व्यक्ति ने या जो भी अपना कुछ बंगला बना लिया बिल्डिंग, अध्यात्म की शांति किसी के पास नहीं, बैठना किसी को नहीं है, ईश्वर को याद नहीं करना है, मृत्यु बोले नहीं बुढ़ापे में कर लेंगे, 50 के बाद तो है ना भाई, जब चल नहीं पाएंगे 60 में तब तीर्थ यात्रा कर लेंगे, तब जानेंगे ईश्वर को। अरे भाई, याददाश्त ही नहीं रहेगी, अल्जाइमर हो जाएगा, क्या याद करोगे ईश्वर को, कौन हो, किसने मैकेनिज्म दिया भाई, इतना बढ़िया लिवर भी है, किडनी भी है, फंक्शन है, मैं सोच रहा हूं, बात टाइप हो रही, जुबान से निकल रही है, कौन है ये, किसने बनाया, कैसे सांस ले रहा हूं, कैसे, और उसको मैं धन्यवाद भी नहीं देता, न सुबह उठता हूं कि आज फिर जिंदा उठा, एक भी बार धन्यवाद नहीं, सोते हुए धन्यवाद नहीं, तकलीफ हुई, टांग टूटी, हाथ गई, किसी की मृत्यु हुई तब याद आए प्रभु, जैसे ठीक हो गए चलिए, पैसा नुकसान हुआ, पैसा आ गया फिर भूल गए भगवान को, इतना मनुष्य अपॉर्चुनिस्ट होता जा रहा है। अब मुझे ही को देख लो कलाकार हूं, मुझे लोग बोलते हैं राजनीति में क्या कर रहा हूं, मेरा भाग्य देखो, शिवजी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, पूरा देश जानता है, इसीलिए कहता हूं नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। गोरक्षनाथ बाबा मिले वहां पर, वहां सेवा का मौका मिला, तो आप सब लोग सेवा कर रहे हैं तभी आप लोग यहां आए, मुझे यहां दीदी ने बुलाया, मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, मुझे जाना है, लेकिन मैं ठंड में फिर आऊंगा जब कड़ाके की ठंड होगी, और यहां 2 दिन रहूंगा मैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगा, बस जैसे कुर्सियां, मुझे लगता है 5,000 लोग हैं यहां पर, कुर्सियां खाली हैं, बाकी लोग भोजन वोजन करके आराम कर रहे हैं, कहीं आए थे सब सेशन, कोई बात नहीं, यही आनंद है। चलिए फिर हमारा सुर लगा, हम बहुत लंबा बोल देंगे हमको, अब जय हो आप लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता रवि किशन जी का। अभी पहले आदरणीय धामी जी का हम सत्कार करेंगे, गॉडली गिफ्ट आप सबको दी। आदरणीय जयंती दीदी जी, सम्मान कर रहे हैं आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे बीच आए, इस सभा की शोभा आपने बढ़ाई और तीर्थ स्थान आबू में फिर से आपका बार बार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता रवि किशन जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा गोरखपुर से आए हैं, शिव पिता की गोद में आप आए हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब इस सभा में आप भी उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आदरणीय श्री मैं निवेदन करती हूँ, आदरणीय श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, आपका भी पहले स्वागत किया जाएगा, फेलिसिटेशंस करेंगे। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी का भी फेलिसिटेशन आदरणीय जयंती दीदी जी, मृत्युंजय भाई जी करेंगे। भ्राता श्री महेंद्र भट्ट जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, इनका भी सम्मान किया जा रहा है। सभी करतल ध्वनि से सम्मान करें भट्ट जी का। सम्मान के बाद भ्राता बिट्टू जी भी अपना इंस्पिरेशंस रखेंगे, दो शब्द। भ्राता श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड फूड प्रोसेसिंग, इनका भी सम्मान किया जा रहा है आदरणीय मृत्युंजय भाई जी के द्वारा। आदरणीय दीदी जयंती बहन भी इनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर समागम है, त्रिमूर्ति भाई हमारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हम सबके बीच आए और अभी समय भी दिया और भी बार बार आकर अपनी अंतरात्मा को सशक्त करने के इस स्थान पर विशेष फिर से आपका निमंत्रण है, आमंत्रण है। राजश्री अग्रवाल जी, राशि अग्रवाल जी अभी दो मिनट इस सभा को वे भी संबोधित करेंगे। राशि अग्रवाल जी,
ओम शांति। आदरणीय दीदी कह रहे हैं अपना परिचय दीजिए, लेकिन सत्य कहूं दीदी, ओम शांति के मध्य का ये जो मध्य का प्रयास है, ओम अभी तो ये पूरा मंच ये खाली हो गया और मेरा भाव परम आदरणीय दीदी जयंती के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करके दीदी मेरा ये भाव बना। मैंने मेरे साथ दीदी बैठे थे आदरणीय, मैंने उन्हें कहा ये ओम शांति का मंच है और यहाँ कोई महिला नेत्री जिन्हें संसार, जिन्हें भारत माँ है, जो यदि राजनीतिक क्षेत्र में उसे सेवा दे तो वो भी कोई सज्जित होनी चाहिए। कुछ ही क्षण बीते थे आदरणीय पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के, जो बहुत ही आदरणीय और बड़े ही परिश्रमी और बड़े ही जो समाज, देश और धर्म की आपस में बहुत ही सुंदर संगम रखते हुए जो सेवा कर रहे हैं, उनके द्वारा मुझे यहाँ पर आशीर्वाद का मौका मिला। दीदी मनः भाव ये है, ये सच है, पुरुष बलशाली है पर नारी की महिमा भी निराली है। तभी तो कान्हा के 56 भोगों पर एक तुलसी की पत्ती भारी है। माँ ये ओम, ओम माँ, ये ओम का जो नाद है जो सकल विश्व में ब्रह्मांड में न आदि अंत जिसका पुरुष तत्व, ओम मुख्य है किंतु ये शांति ओम के बाद जो ओम नाद का जो प्रसाद है वो शांति है। और ब्रह्म बाबा के इस गुलशन में मैंने ये देखा जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के शीश पर हाथ धरकर जब उन्होंने कहा कि आप हृदय से संवेदनशील अवश्य हैं किंतु शक्ति हैं, शिव की शक्ति है नारी, और जब दीदियों ने इस आज जो आज वासुदेव कुटुंबकम का ये जो मंत्र आज यहाँ से उद्धृत हुआ है, समय की आवश्यकता के अनुसार दीदी आप ये देखिए कि आज उस माँ के मन की संवेदनशीलता, उसकी ममता, आप उनकी दूरदर्शिता को प्रणाम जिन्होंने कहा कि आज जब खंड खंड हो रहा है मानवता का भाव, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक बेहद खूबसूरत सी ये धरती, हम ही इसे भारत कहीं ईरान बना गए। वासुदेव कुटुंबकम के इस आज उस मंत्र को जपते हुए यदि परिणाम लेना है तो माँ मुझे लगता है कि ब्रह्म बाबा ने जितनी भी दादियों के शीश पर हाथ धरकर ये एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसे प्रधान महिलाएं माँ की संवेदनशीलता और ममता इसे न केवल संभाल रही है वरन मुझे तो ये आभास होता है कि ये शांतिवन, ये एकड़ एकड़ की भूमि, ये केवल छोटा सा एक हमारे समक्ष एक उदाहरण है और ये धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में ये शांति का ओम उच्चारण से जब हृदय की जमीन पर माँ के आशीर्वाद से, उनके सुवचनों प्रवचनों से जब धरती, हृदय की धरती पर ये अंकुरित होंगे, सिंचित होंगे और सिंचित होकर जब ये वट वृक्ष का रूप ले लेंगे तो सकल ब्रह्मांड को जो वासुदेव कुटुंबकम का हम आज ये मंत्र लेकर चले हैं, वास्तव में ये माँ आपके हृदय की संवेदनशीलता, ममता और ओम की कृपा से ये शांति प्राप्त होगी। ओम शांति है।
बहुत खूब कहा राशि अग्रवाल जी आपने। और अभी हम आज के राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है, वे आप देख रहे हैं कल जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी आए हुए थे और उसके बाद शाम में 5 बजे भी आप सबको एक सुंदर सेशन कराया था और अभी भी हम सबके बीच में हैं। और आज का जो विषय है वसुधैव कुटुंबकम, इसको लेकर के वे हम सब के समक्ष अपने भाव भी रखेंगे और हम सबको योग अभ्यास भी कराएंगे, आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी। और जयंती दीदी जी बहुत छोटी उम्र से, 8 साल की उम्र से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े और इंटरनेशनल सेवा में इनका अपना एक बहुत बड़ा जो है वो रोल रहा है, जो मोर देन 100 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी आज आप देख रहे हैं। आदरणीय जयंती दीदी जी,
ओम शांति। आप यदि कभी माउंट आबू में फेब्रुअरी मास में आए, माउंट आबू आबू रोड एक ही हम मधुबन कहते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वसुधा कुटुंबकम की प्रैक्टिकल सीन क्या होती, क्योंकि अपने सारे विश्व के जो मुख्य देश संभालने वाले सेंटर संभालने वाले का संगठन रहता, उसमें आने तो बहुत ही चाहते हैं परंतु फिर भी जिनों को निमंत्रण है उन्हों को हम बुलाते हैं जो देश या सेंटर संभालते हैं, तो उसमें मुख्य मुख्य करीब 450-500 तक भी आ जाते, वो आते हैं करीब 90-100 देश से। अभी भी माउंट आबू में एक तरफ इज़राइल के भी बैठे हैं और साथ ही साथ मुसलमान भाई बहनें भी रहती हैं। और जब कुछ समय पहले रॉबर्ट मुलर आए थे माउंट आबू में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएन के, तो उन्होंने कहा कि यूएन सोच रहा है, ये 83 की बात है जब यूनिवर्सल पीस हॉल ओम शांति भवन का उद्घाटन होने जा रहा था, तो उस समय उन्होंने ग्रुप के साथ मुलाकात करके कहा कि यूएन चाहता है कि हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाएं, परंतु मैं उन्हों को जाकर के बताऊंगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो पहले से ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि विश्व भर के भाई बहन मिल करके कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात की पहचान बिल्कुल अपने मन में अपने जीवन में पक्की करके रखी है कि हम सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर की संतान के नाते से हमारा आपस में संबंध क्या है? भाई बहन का संबंध। और आपको ये भी जानकर के खुशी होंगी कि विदेश में सारे भारत तो क्या परंतु सारे विश्व भर में एक त्यौहार बहुत बहुत दिल से मनाया जाता है, वो है रक्षाबंधन। आप कहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, आप ढूंढ लेना ब्रह्मा कुमारीज को। और खास वो रक्षाबंधन पर लंदन में तो हम करीब 10 दिन के लिए मनाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होती है जो हम 1-4-5 दिन में नहीं कोप कर पाते, तो हजारों की संख्या में लोग राखी बांधने आते हैं। रक्षाबंधन का जो असली मतलब है, रक्षक एक। जब मैं विदेश में रहती फिर भारत में आती रही टीनेज ईयर्स में, तो मुझे उस समय कहते थे कि आप अपने भाई को राखी बांधो, तो मेरी उम्र जब 15 साल की थी और मेरा भाई 11 साल का था, और वो उस समय तो मेरे से छोटा लगता था, अभी तो बहुत लंबा है, तो उस समय मैं सोचती थी कि ये हमारी रक्षा क्या करेगा, परंतु एक फन के हिसाब से, बस खुशी मनाने के हिसाब से मैं भी राखी लेकर के फिर उन्हों को बांधती थी। परंतु वास्तव में हम सबका रक्षक एक परमात्मा, आज मैं रहती हूँ लंदन में, वो रहता है कनाडा में, वो हमारी क्या रक्षा करेगा लौकिक भाई। तो कहने का मतलब, जब एक परिवार है, परमात्मा को जान करके हम इस बात को मान करके चलते हैं, तो सचमुच एक एक आत्मा के साथ हमारा भाई बहन का बहुत ही सुंदर संबंध बना रहता। और न सिर्फ ये एक मंत्र है जाप करने का, परंतु रियलिटी में किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म वाला हो, परंतु उनों को हम उस दृष्टि से देखें, आत्मिक दृष्टि से, तो सचमुच हमें बिल्कुल पहचान होगी कि ये हमारा भाई अथवा बहन है। और जब हम उससे भी पार जाते हैं, निराकार परमपिता शिव को याद करते हैं, शिव बाबा का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन चलता रहा है, और कभी फिर आज नहीं कहीं और समय आपको ये एक और गुह्य बात जानना बहुत ही आवश्यक है कि शिव निराकार देवों का देव वो अलग, और शंकर महादेव वो अलग। अभी वो टॉपिक नहीं है, परंतु इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और हम दोनों को मिला करके जब तक चलते हैं, तब तक उस निराकार परमात्मा के साथ जो हमारा बुद्धि का योग जुट करके उसे शक्ति प्राप्त हो, उसके गुणों का अनुभव हो, हर प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हो, वो तब होता जब हम अपने आप को भी निराकार आत्मा मान करके उसके साथ, निराकार के साथ संबंध जोड़ती हैं। तो उस हिसाब से भाई बहन का भी नाता नहीं, उससे भी पार हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई का नारा भी भारत में मैंने छोटेपन से ही सुना था, परंतु रियलिटी में कैसे भाईचारा क्या होता, कैसे एक दो को हम सहयोगी बन करके साथ दे करके चल सकते, वो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें प्रैक्टिकल उसका अनुभव कराया। जो बातें हम भक्ति में करते हैं, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे, न सिर्फ भारत की भक्ति के संबंध से, परंतु विदेश में क्रिश्चियनिटी के संबंध से भी। परंतु जब से मैंने ज्ञान समझना शुरू किया, और हाँ बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी का संग मिलता रहा, परंतु जब खुद में जागृति आई कुछ वर्ष के बाद, तो जब ये बातें स्टडी करने लगी, मुझे तब फिर पता चला कि एक एक भक्ति की रीत रस्म क्या है, उसका आंतरिक गहरा सिग्निफिकेंस क्या है, और उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कैसे कर सकें। आज यदि हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में कहाँ तक हम आदि सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं, परंतु न सिर्फ भारत की बात, हर देश में जो अपना धर्म हमें शिक्षा देता, कहाँ तक हम उसको फॉलो करते हैं। कारण कि एक तो प्रश्नों का उत्तर किसके पास नहीं होता, तो नौजवान हर देश में धर्म के नाते से थोड़ा दूर किनारा करते जा रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो मन शांति से परमात्मा की याद में स्थिर कैसे हो सकता। और दूसरा, जब तक कि सिर्फ कर्म कांड चलता, शास्त्रों की कहानियां सुनाने वाले भी उसके अर्थ को नहीं पालन करते, तो वो भी एक मन में बड़ा भारी प्रश्न उठता। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कार्य किया, एक तो हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया, और दूसरा भक्ति का मतलब क्या है, भावना किस प्रकार से सच्ची हो, और किस प्रकार से अपने जीवन को उस मीनिंगफुल स्थिति से हम पालन करें। इस कारण से आप देखेंगे कि सारे विश्व भर में आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में वहाँ लोकल लोग भी कार्य समझ करके टीचर बन करके कार्य संभाल रहे हैं। सारे यूरोप खंड में करीब 30 देशों में बाबा का कार्य चल रहा और वहाँ पर केवल 2 निमित्त बनी हुई आत्माएं विदेश में आई, दादी जानकी और दीदी सुरेश। बाकी सब लोकल तरफ जो भी टीचर्स बने हैं वहाँ ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके उसको जीवन में पालन करके वो अपने जीवन के द्वारा वो शिक्षा अन्य आत्माओं को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि रियलिटी विश्व एक है, रियलिटी एक परमपिता परमात्मा मात पिता वो हम सबका एक है और परिवार एक है। एक एक बात को समझ करके अनुभव करके हम कहते हैं कि हाँ सचमुच हम एक परिवार है। और इन बातों को जितना जितना हम सुनते जाएंगे, मनन चिंतन उस पर करते जाएंगे, जीवन में धारण करते जाएंगे, हमें सचमुच भगवान किस तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे जीवन को हर प्रकार से आगे बढ़ाते जा रहे हैं वो आपको भी अनुभव अवश्य ही रहेगा। मुझे कहा गया है मेडिटेशन कराने के लिए, तो भाषण तो आपने बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आज सुने। मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं सुनती रही कि एक भाषण दूसरे भाषण से बढ़िया रहा। मैं समझती 2.5 घंटे ऐसे बीते हैं जैसे कि बिल्कुल पानी के समान, क्यों क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिली, कोई भी बोरिंग स्पीकर नहीं रहा। तो आप सब वैसे तो बहुत स्पीकर्स चले भी गए हैं परंतु जो भी बैठे हैं उन्हों को थैंक्स। तभी अनेक बातें सुनने के बाद अब थोड़ा साइलेंस का अभ्यास करते और उसमें भी बहुत ही सहज है। मैं अपना विचार बताती रहेंगी, वैसे तो साइलेंस का ही अनुभव श्रेष्ठ है परंतु प्रश्न यही होता कि अपने मन को शांत कैसे करें। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई है, संकल्पों को रोकने की आवश्यकता नहीं है परंतु संकल्पों को मोड़ने की आवश्यकता है। उसको नेगेटिव वेस्टफुल साधारण संकल्प से ऊंच चले जाएं, शुद्ध न सिर्फ पॉजिटिव परंतु शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प हम रचें। उस आधार पर ही हमारा संकल्प शक्ति के आधार से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ सकता। तो आप अपने मन में वो बातें उस अनुसार चलाते रहेंगे, आपको अवश्य वो अनुभव होगा। अनेक बातें सुनकर मन में यही संकल्प आता कि हम इन बातों का अनुभव करें। अभी मुझे पहचान मिली कि मैं ये शरीर नहीं, मैं हूँ आत्मा। ब्रह्मचर्य के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा खुद को जानकर ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा को याद करते, संकल्प उस परम पिता परमात्मा तक हमारे पहुंचते और जैसे ही बिंदु का उस परमात्मा के साथ संबंध जुटता तुरंत ही सागर के द्वारा अत्यंत प्यार परम शांति और शिव की शक्ति महसूस होती। शिव बाबा के संतान के नाते से जैसे मेरा बाप वैसे मुझ आत्मा का आदि स्वरूप शांति का सागर हमें शांति की किरणें देकर हमें फिर से असली आत्मिक स्वरूप की शांति का अनुभव कराते आदि स्वरूप में मेरा धर्म ही है शांति स्वधर्म सुख देने वाला शांति परमात्मा प्यार का सागर न केवल हमें प्यार का एक बूंद देते सारा ही सागर आत्मा तक पहुंच जाता जितना हम अपने में समा सके हम समाते जाएं और आत्मा उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप प्यार स्वरूप प्रेम स्वरूप बनती जा रही परम पिता सर्व आत्माओं के पिता तो सागर द्वारा शांति प्रेम सर्व आत्माओं तक फैलता जा रहा जिस आत्मा की जिस घड़ी वो समय आता वो उस सागर का अनुभव करके वो आत्मा जागृत होती और अपने में वो सागर समाती जाती शांति की शक्ति प्रेम की शक्ति विश्व को सर्व आत्माओं को एक ही प्यार के सूत्र में बांध करके फिर से विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य करती यही संकल्प रखते वापस यही समय इसी स्थान को याद करते आत्मा का ध्यान फिर से यहां आता परंतु शांति और प्रेम अपने में समाकर यही सोचते कि मन वचन कर्म द्वारा हम सबको वही शांति और प्रेम संबंध की याद दिलाएं ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। आप सबको पता हो रोज सुबह जो आपको शिविर का क्लासेस चल रहे हैं 7 बजे, वह राजयोग के बारे में ही और डिटेल में बताने के लिए होते हैं, इसलिए वो क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करना। और अंत में एक कन्या है जो एक सुंदर सा डांस प्रस्तुत करना चाहती है, श्री विद्या मुरलीधर, सौरभ संगीत नृत्य कला परिषद मैंगलोर से। तो हम थोड़े क्षण बैठे रहेंगे और उस कन्या का यह डांस देखेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इस प्रोग्राम में बैठे रहे शांतिपूर्ण और आपने यह कार्यक्रम देखा। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, अतिथि जो आए हुए थे उनका भी बहुत थैंक्स, और जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इस प्रोग्राम में, लाइट साउंड सारे ही डिपार्टमेंट्स, उनका भी थैंक्स। अभी अंत में इस डांस के साथ हम एंड करेंगे।
तक देखो तक ददी की नदों तक दिता तड़ी दी गुतक दाम दीन गुदाम तक ददी की नदों तक दिता तड़ी दी गुतक दीन दीन गुदीन तक ददी की नदों तक दिता तड़ी दी गुतक दाम दीन गुदाम तक ददी की नदों तक दिता तड़ी दी गुतक दीन दीन गुदीन तक ददी की नदों तक दिता तड़ी दी गुतक दाम तक दिता तड़ी दी गुतक दीन त्रिगड़ दिता तड़ी दी गुतक दाम त्रिगड़ दिता तड़ी दी गुतक दाम तड़ी दी दताम दीन दताम तक दीन दीन दतई दीन दताम तक तंग दिख दग दर गिड़ दो तक तंग दिख दग दर गिड़ दो तक तंग दिख दग दर गिड़ दो
अच्छी तरह से शिव परमात्मा का स्वागत आप डांस के द्वारा किया और अंत में सभी को शारदीय नवरात्रि की भी शुभेच्छा शुभकामनाएं और अभी एक मिनट साइलेंस के साथ एंड करेंगे।